يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا توسر وتمم بالخير. قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ابھی میں نے آپ کے سامنے سورت مائدہ کی آیت نمبر 35 کا کچھ حصہ رکھا. اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, یعنی جب بھی کسی کو ایمان کی نسبت سے پکارا جائے تو اس کے بعد یقیناً کسی عمل کا تقاضا ہوگا, کیونکہ ایمان عمل کو پکارتا ہے. عمل نہیں آئے گا تو آہستہ آہستہ ایمان بھی پھیکا ہو جاتا ہے, پھر بیمار ہوتا ہے اور پھر ختم بھی ہو جاتا ہے. تو ایمان کی پکار کا عملی نتیجہ کیا ہے کہ اتقوا اللہ, اللہ سے ڈر جاؤ. تقوی کیا ہوتا ہے؟ پورے دین کا خلاصہ. یہ سب سے پہلی چیز جس کا سورت البقرہ میں ذکر آیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ کے بعد وہ کیا تھی؟ ہدی للمتقین, کہ ہدایت یا گائیڈنس تو متقیوں کو ملے گی. تو وہاں ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا کہ متقی کون ہوتا ہے؟ جس کے دل میں ہدایت کی طلب آ جائے. یعنی تقوی کی سمپل سی ڈیفینیشن کیا ہے؟ خود کو بدلنے کا شوق. I want to change myself. I want to improve myself. پھر جب یہ کیفیت دل میں آتی ہے نا تو پھر ہر وقت اللہ کی موجودگی کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو لہٰذا جب تقوی لفظ آتا ہے تو ہمارے ذہن میں اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف آنے لگتا ہے. لیکن اس کی اصل دیکھیں تو کیا ہے؟ اللہ کے ڈر سے غلط چیزوں کو چھوڑ دینا. بہت سارے لوگوں کو تقوی کا یہ معنی معلوم ہوتا ہے الحمدللہ, لیکن آدھا تقوی ہے یہ. جس طرح اللہ تعالیٰ کے خوف سے غلط چیزوں کو, نافرمانی کی چیزوں کو چھوڑنا تقویٰ ہے, اسی طرح سے اللہ کے خوف سے نیکیوں کے مواقع کو اپنا لینا, اڈاپٹ کرنا, یہ بھی تقویٰ کا ایک نتیجہ ہوتا ہے. دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ لیجئے کہ گناہوں کو تو چھوڑ دیتے ہیں لوگ, لیکن نیکیوں کے بہت سارے مواقع ضائع کر دیتے ہیں. تو جب تقویٰ آتا ہے اندر تو نیکی کا چھوٹا چھوٹا چانس اور موقع انسان کو اپنے لیے ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ لگتی ہے. پھر وہ اوور لک نہیں کرتا, میں یہ نہیں کروں گی, یہ نہیں میں کر سکتی, نو اٹس ٹو ہارڈ, میں کمٹ نہیں کر سکتی, میں آ نہیں سکتی, میں جا نہیں سکتی, اس طرح کی کیفیات نہیں آتی اس میں, بلکہ انسان پھر نیکیوں کے مواقع ڈھونڈنے لگتا ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب انسان کے اندر تقویٰ آتا ہے نا تو اس میں دو چیزیں آتی ہیں. نمبر ایک, جب اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہو, کوئی ایسے حالات, کوئی سرکمسٹانسز ہوں جس کی بنیاد پہ وہ اللہ سے دور ہوگا تو وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے. اس کو اللہ کا قرب چاہیے ہوتا ہے, تو اللہ کے قرب کے راستے کی رکاوٹ گناہ ہے. ایک ایک کر کے وہ گناہ چھوڑتا جاتا ہے. لیکن پھر اگلا سٹیپ جو اس سے بہت بعد میں آتا ہے ویسے, وہ کیا ہے کہ پھر نیکی کے مواقع بھی بہت بڑی انویسٹمنٹ لگتے ہیں. میں آپ کو مثال دوں گی, ہم اپنی گھریلو زندگی سے اگر اس کو سامنے رکھ لیں, آپ دیکھیے کہ صبح سے شام تک آپ اپنے گھر میں بہت سارے اچھے کام کرتی ہیں نا, آپ کے بچے بھی کرتے ہیں. کوئی اور آپ سے کہے کہ آج سارا دن میں آپ نے کیا نیکیاں کی, تو میرا خیال ہے کہ آپ گن لیں گے, وقت پہ اٹھے, فجر پڑھی, قرآن پڑھا, دعائیں پڑھی, بچوں کے لیے ناشتہ بنایا, پھر یہ کیا, گھر صاف کیا, پھر دس اینڈ دیٹ, پھر جو بھی ایک ہاؤس وائف کرتی ہے. اسی طرح آپ میاں سے پوچھیں گے, وہ اپنی باتیں بتائیں گے, بچے اپنی بتائیں گے. میں آپ سے پوچھوں کہ اچھا جی بتائیں کہ جو کچھ آپ نے کیا ہے ماشاء اللہ اتنا کچھ, کیا آپ اس کے علاوہ کچھ اور بھی کر سکتی تھیں؟ بلکہ آپ یہ بات اپنے بچوں سے پوچھیں کہ بیٹا اچھا آپ نے جو کچھ کیا بھلا آپ کوئی اور نیکی بھی کر سکتے تھے؟ اب وہ سوچ میں پڑیں گے, وہ کیا؟ آپ کہیں گے نمازیں پانچ پوری پڑھ لی ماشاء اللہ, اور جو کچھ بھی کرنا ہے چیریٹی بھی دے دی. لیکن ہم کیا بھولتے ہیں, مثال دیتی ہوں آپ کو, ڈائننگ ٹیبل پہ کھانا لگتا ہے نا, سب نے بیٹھنا اور کھانا. آپ نے کھانا اس سوچ کے ساتھ اگر بنایا کہ میرا پکا ہوا کھانا کھا کر اگر میرے بچے, میرے میاں یا کوئی چند مہمان ہیں کھائیں گے تو ان کی نیکیوں میں میرا حصہ بڑھے گا, ये नियत करना भी एक तकवा का हिस्सा था कि आपने उसको लिया। अब क्या हुआ कि प्लेट्स रखे, एक सूरत के कि हर बंदा अपनी प्लेट पकड़ता। अब कहते मैं खुद लेती हूँ। आप बच्चों को क्या सिखाते हैं कि बेटा देखो आप सर्व करें, ये प्लेट अगर आपने आंटी को दी, आपने बहन को दी, आपने उसको दी, अब इस प्लेट में जो भी खाना वो खाएंगे इसमें आपको अजर मिलेगा। समझ आ रही है? पानी का ग्लास, आप कहते हैं कि मैं खुद पानी डाल लेती हूँ। नहीं बेटा, आप मुझे पानी डाल के दें, मेरे पानी का मेरे इस पानी को पीने का अजर आपको मिलेगा। बात समझ रहे? करना सबने वही काम होता है, हर एक ने एक एक प्लेट उठानी थी, अपनी उठाने की बजाय दूसरे की उठा दो और दूसरे से उसकी अपनी ले लो। पानी सबने पीना है, अपना पीने की बजाय आप लिपि डाल के किसी और को दे दें, दूसरा आपको डाल दे। तो ये जो छोटे छोटे मवाक़े ना, ये तकवा के साथ पैदा होते हैं। हमारे यहाँ अमूमन बड़ी बड़ी नेकियों के मवाक़े ओवरलुक कर देते, बल्कि इस जुमले को ऐसे कह दूं ना अगर, कि बड़ी बड़ी नेकियों के लिए तो तरसते हैं, हाय अल्लाह उम्रे पे ले जाए, हाय हज करूं, अल्लाह मुझे ये करवा दे वो करा दे, बड़ी बड़ी नेकियों के लिए। और छोटी छोटी बीसियों नेकियां जो हमारे हाथ में होती हैं एवरी डे, हम उसको छोड़ देते हैं। तो अगर आज एक किस नशिस का पहला नुक्ता आपको ये दे दूं कि अपने लिए लिख लें कि आपने अब नेक्स्ट सेशन से पहले पहले अपने आप को चेज करना है, घर में कितने नेकियों के और मवाके थे जो अगर मैं थोड़ी सी और एफर्ट करती तो मैं उसको हासिल कर लेती, और यही फीलिंग्स बच्चों को भी दें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि घर में दौड़ लग जाएगी। क्यों दौड़ लगी रहती थी अबू बकर और उमर की, कि जब हजरत अबू बकर सिद्दीक नेकी करते थे तो उमर कहते थे कभी मैं भी इन जैसी नेकी करूं। तबुक का मौका आया तो इस्लाम के दिफा के लिए हर चीज की जरूरत थी, तो हजरत उमर रजी अल्लाह अनहु अपने घर का आधा सामान लेके आ रहे हैं, यानी चीजों को सॉर्ट आउट किया या जो कुछ किया, कहा कि आज तो लगता है कि मैं उमर अबू बकर से ज्यादा ही नेकियां करूंगा, कि आज मैं आधे घर का सामान ले आया हूँ, और उनके आधे घर का सामान भी कितना होगा, ट्रक और कोई ट्रेलर्स भर के नहीं आएगा, यानी जो भी था। अल्लाह ताला को इसकी कोई केयर नहीं कि कितना था, अल्लाह को ये पता है कितने में कितना था, यानी अल्लाह की नजर परसेंटेज पे होती है ना कि क्वांटिटी पे होती है। लेकिन जब अब हजरत उमर लेकर आए वहां सामान तो क्या हुआ, देखा कि अबू बकर तो पूरा ही लेके आ गया। फिर उन्होंने कहा कि मैं अबू बकर को कभी बीट नहीं कर सकता। अभी उनकी जो बातें थी ये कोई कॉम्पिटिशन नहीं था, बल्कि ये क्या था, वफी जालिकफल यतना फसिल मुतनाफिसुन, और चाहिए कि इसी में रगबत करें एक दूसरे पर रगबत करना। तो क्या पता चला कि अपनी नेकियों को बढ़ाने की फिक्र करने का नाम भी तकवा है। इसी तरह देखिए कि तकवा के लफ्ज के अंदर जब हम खौफ का लफ्ज डालते हैं ना तो ये बड़ा बोरिंग लफ्ज हो जाता है, हाय अल्लाह नाराज होगा, अल्लाह मारेगा, अल्लाह गुस्से में आएगा, अल्लाह जहन्नुम में डालेगा, जबकि तकवा के लफ्ज में मोहब्बत भी होती है। और वो क्या होती है कि अल्लाह की मोहब्बत ना छिंजे मुझसे, यानी जैसे आप किसी से भी मोहब्बत करें तो आपको दो ही चीजों का शौक होता है ना, एक ये होता है कि वो आपसे नाराज ना हो, आप उसको अच्छे लगे, और दूसरा क्या होता है कि वो आपसे मोहब्बत भी करे। तो लिहाजा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो अल्लाह से डर जाओ, इसके बाद क्या करो, वबतगू और तलाश करो, बगी से इब्तिगा तलाश करो, क्या इलैही उसकी तरफ, अल वसीला वसीला। सिंपल माना देखें तो वसीला उर्दू में वही लफ्ज मानी देता है जिसको उर्दू में हम कुर्ब कहते हैं, अल्लाह का कुर्ब तलाश करो। अब यह मैंने आज क्यों ली, आप जानते हैं कि हम रमजान की तैयारी के नाम पर इस्लाम ए टू जी कर रहे हैं, यानी हम देख रहे हैं कि हमारे अकायद में कुछ ऐसी चीजें तो नहीं है कि जिनकी मौजूदगी हमारी रमजान की नेकियों को बर्बाद कर दें। और सिर्फ रमजान तक इसको क्यों रखे, अगर ये कोर्स हम इस सोच के साथ भी कर रहे हैं कि चले पता तो चले कि हमारे अकीदे में और हमारे मामूलात में कोई ऐसी नेगेटिव थिंग्स तो नहीं है कि जिससे हमारी नमाजें जाया होती हैं, दिन में 5 नमाजें आप पढ़ते हैं और बाद में पता चलता है कि आपकी वो वैलिड नहीं हुई, वजह क्या, जिसमें ये वजह थी। कई तो ऐसा होता है ना हमको दुनिया भी जिंदगी में। तो हमने शिर्क के मौजू पे पिछले 2 नशिस्तों में हमने बात की है, शिर्क क्या होता है, कैसे है, उसकी मुख्तलिफ किस्में, उसके स्टेप्स हैं, किन मीन्स के जरिए शिर्क आता है। तो उन मीन्स में से आखिरी मीन पे आज हम बात करेंगे, और वो क्या है, नाजायज वसीले बनाना। आपने ये लफ्ज सुना है कभी? हमारी सोसाइटी में ये लफ्ज़ बिल्कुल मिसअंडरस्टूड किया जाता है। और क्या कहते हैं कि जी कुछ कहते हैं बस जी, वसीला बना लो किसी का भी और तुम्हारा बेड़ा तर जाएगा। बुजुर्गों का वसीला और कुछ इस किस्म की वसीलत, कुछ एक दूसरी इंतहा पे जाते हैं, कहते हैं वसीला तो है ही कोई नहीं, किसी का वसीला नहीं बना सकते। तो आज इंशाल्लाह हम भरपूर तरीके से लफ्ज़ वसीले पे बात करेंगे। सुनना चाहते हैं? इज इट इंटरेस्टिंग? अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहली बात है कि लफ्ज़ वसीला होता क्या है, इसको समझिए। देखिए उर्दू में आप लफ्ज़ बोलते हैं अल्लाह वसीला पैदा करेगा, वो सीन लाम इसका रूट है। वसीला कहते हैं दो चीजों के दरमियान वास्ता। जैसे मैं अभी बोल रही हूं तो मेरे हाथ में आप देखिए मेरे सामने माइक रखा हुआ है ना, और उधर स्पीकर रखा हुआ है। अगर मेरे सामने माइक होता और आपके पास ये स्पीकर भी होता, लेकिन ये बीच की तार मिसिंग होती आज, तो क्या मेरा बोला हुआ आपको स्पीकर में आता? बस ये तार क्या है, ये वसीला है। ठीक है, इस तार के जरिए से मेरी आवाज आप तक पहुंच गई। तो वसीले के अंदर जरूर ही कुछ ऐसी चीजें आती हैं जो एक को दूसरे से जोड़ती हैं। पहले तो हम देख लेते हैं कि आम लोग इस वसीले का क्या मानी लेते हैं। वो क्या कहते हैं कि अल्लाह से दुआ करने के लिए बीच में किसी नबी, वली, बुजुर्ग का वसीला या वास्ता डालना पड़ता है, फिर दुआ करें तो फिर कबूल होती है। मसलन क्या कहते हैं, अल्लाह फलां हस्ती के सदके या उसके वसीले हमारी मुश्किलात दूर कर दे, और लोग इसको वसीला कहते हैं। हम देखते हैं कि हमारे असलाफ यानी जो प्रोफेसर सल्लम के क्लोज के लोग थे, उन्होंने या अय्युहल्लज़ीन आमनु तक़ुल्लाह वब्तग़ू इलैहिल वसीला से क्या मुराद लिया? तो सबसे मोस्ट ऑथेंटिक वही होंगे जो नबी सल्लम के करीब थे। तो इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु, जिनको हम मुफसरे कुरान भी कहते हैं, उन्होंने इस आयत की तफसीर में क्या कहा? कहते हैं कि इससे मुराद क्या है कि नेक आमाल करके अल्लाह का कुर्ब हासिल करो। सिंपल डेफिनेशन, वक्त तगु इलैहिल वसीला से मतलब क्या है कि तुम नेकियां करते जाओ और अल्लाह के करीब होते जाओगे। बिल्कुल वही बात लग रही है जैसे आपने हदीस बहुत दफा सुनी होगी कि क्यामत के दिन साहिबे कुरान को बुलाया जाएगा और उससे कहा जाएगा इकरा वरका, पढ़ते जाओ और तुम्हारे रैंक ऊपर होते जाएंगे। तो जाहिरी बात है जो जितनी नेकियां करेगा अल्लाह ताला को अच्छा लगेगा ना, तो अल्लाह का कुर्ब हो जाएगा। लेकिन लोगों ने जब इसको मिसअंडरस्टूड किया तो जरूरत पड़ी कि हम क्या इसके ऊपर बात करें। तो आइए देखते हैं कि वसीले से क्या मुराद है। पहली चीज देखिए कि वसीला जो है रग़बत के साथ, खुशी के साथ कोई काम करना ताकि किसी का कुर्ब हासिल हो। इसी तरह जन्नत का जो सबसे आला मुकाम है ना, द मोस्ट आप कह लीजिए कि हाई रैंक इन जन्ना, इस वसीला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में हम अजान के अंदर जो दुआ, अजान के बाद दुआ सुनते हैं, उसके अंदर लफ्ज क्या आता है, वब्तगू इलैहिल वसीला, वो लफ्ज इसी वसीला से मुतल्लिक है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरे लिए तुम अल्लाह से वसीला मांगो, और वसीला जन्नत का वो मुकाम है जो सिर्फ एक बंदे को मिलेगा, और मुझे लगता है कि वो मुझे मिलेगा। तो जो अजान के बाद दुआ पढ़ी जाती है उसमें जो आता है वक्त मिलेगी वसीला, था वो यही वसीला, दिस इज अ पॉइंट इन जन्ना। अब उसको लोग क्या समझते हैं, क्या कहते हैं, ये एक और चीज है। आप कह सकते हैं कि वसीला लफ्ज जो है अगर आप इसको शरीयत में यानी शरई मानी इसके देखें तो इबादात और अमल सवाले के जरिए अल्लाह का कुर्ब हासिल करना हो गया, फिर अल्लाह की रजा के सब रास्ते वसीला। आप कोई भी नेकी करें आप देखिएगा आप अल्लाह के करीब पहुंचेंगे। कुछ लोग इबादात में बहुत अच्छे होते हैं, अच्छी इबादत करेंगे अल्लाह के पास उनका मुकाम है। कुछ लोग होते हैं वो नवाफिल में बहुत आगे हो जाते हैं, कुछ डीलिंग्स में बहुत अच्छे हैं मामलात, कुछ जो हैं वो स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग होते हैं। आप भी तो अपने इर्द गिर्द लोगों को देखती होंगी ना, हर बंदा जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अमल कर रहा है ना, इज जस्ट लाइक अ फ्लावर फूल, किसी की एक खुशबू है तो किसी की दूसरी है। जब तक बंदा शरीयत के अंदर रहते हुए कोई नेकी करता है और अल्लाह के नबी के बताए हुए तरीके पे करता है तो इंशाल्लाह वो एक्सेप्टेबल है। तो आप कह सकते हैं कि ये सब कुछ वसीला है। अब सवाल पैदा होता है कि अगर हम किसी चीज को वसीला बनाना चाहते हैं तो वो कौन सी है। तो ये नोट कीजिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यानी आप कहते हैं जी वसीला नहीं बनाओ, हम कहते हैं नहीं बनाओ, आपको तकरीबन 11 से ज्यादा डिफरेंट थिंग्स बताऊंगी कि जिसको वी कैन यूज जस्ट लाइक अ वसीला। ठीक है, बस से पहले सबसे पहली चीज जिसको हम वसीला बनाकर अल्लाह से दुआ कर सकते हैं वो हमारा अपना ईमान है। खालिस ईमान का वसीला दें, क्योंकि ये सबसे बड़ा अमल है ना, अल्लाह पर ईमान ले आना और उसके ऊपर बिलीफ होना, ये सबसे बड़ी चीज है। और इसी के जरिए आखिरत के हिसाब किताब होंगे। इसकी दलील क्या है? अगर आप रात को सूरत आल इमरान का आखिरी रुकू पढ़ती हैं तो आप समझ जाएंगे। सूरत आल इमरान का जो लास्ट रुकू है 190 से 200, उसमें क्या आता है रात की दुआओं में, जो वो लोग क्या कहते हैं कि रब्बना इन्नना आमन्ना फक्तुबना मा शाहिदी। इन्नना आमन्ना के ए अल्लाह हम ईमान लाए हैं, बस तू अब हमें गवाहों में लिख ले। मुफस्सरीन कहते हैं कि यहाँ इस दुआ में अल्लाह ने हमें सिखाया कि जब अल्लाह से मांगो तो ये दुआ करो, अल्लाह हम तुझ पर ईमान लाए, अल्लाह मैं तुझे रब मानती हूँ, अल्लाह मैं तुझे रहमान बनाती हूँ, इस वसीले से तुझसे दुआ करती हूँ। बात क्लियर हुई? यानी मेरा अल्लाह ताला के साथ जो ताल्लुक है ना, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला मेरा ईमान है कि आपके सिवा कोई दुआओं को कबूल नहीं करेगा, तो इस वसीले से मैं आपसे दुआ करती हूँ। बात वाज़े? आप रात को उठते हैं, नमाज पढ़ते हैं, आप किसके डर से पढ़ते हैं? अल्लाह के डर से पढ़ते हैं। तो आप अल्लाह ताला से ये कह सकते हैं कि मेरे मालिक मैं तेरे से अजर की उम्मीद पर रात को जागी हूँ। यानी आप इसको जब अंदर गहराई से देखेंगे ना, तो फिर आपके अपने आमाल ही, और आमाल में सबसे पहली चीज ईमान है। मिसाल देती हूँ कि किसी बंदे के पास ईमान ही नहीं है, काफिर है, या खुद को कहता है मेरा कोई ईमान नहीं है, डोंट हैव एनी बिलीव, वो अल्लाह से क्यों मांगे? और वो क्या कह के मांगे? क्या उसको अल्लाह की बड़ाई पे यकीन है, अल्लाह के खालिक मालिक राजी होने के पे यकीन है? नहीं है ना। इसके बरस जब एक बंदा ईमान लाता है तो अल्लाह को कहता है रब्बना इन्नाना आमन्ना, ए अल्लाह हम ईमान ले आए। इसी तरह आप देखिए बहुत सारी दुआएं नबी सल्लम की जिसमें अल्लाह के नबी ये दुआ करते हैं। जैसे आप देखिए कि यही इस तरह ही मिसाल ले लीजिए कि अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता, दुआ इस्तिग़फ़ार है ना, सैयद अल इस्तिग़फ़ार, वो आगे आएगी भी कि अल्लाह तू मेरा रब है, तेरे सिवा कोई नहीं, और तू मेरे गुनाहों को माफ कर दे। तो यानी आप कह सकते हैं कि अपने और अल्लाह के ताल्लुक को बुनियाद बनाकर जितने मर्जी आप अल्लाह ताला से वसीले बनाए कहें। और किसी का अल्लाह के साथ गहरा ताल्लुक हो, उसका उसका सबसे खूबसूरत इजहार ही है, जैसे हम अपनी जुबान में इसको बिल्कुल लिटरल लेते हैं, अल्लाह मेरा तेरे सिवा कौन है, अल्लाह अगर तू मेरी दुआ नहीं सुनेगा तो मैं किससे मांगूंगी, अल्लाह ताला तू मेरी मदद कर दे। अंडरस्टैंड? इस तरह से आप कह सकते हैं, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। दूसरी चीज जिसको हम वसीले के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं ना, वो अपनी नमाजों का वसीला है। नबी सल्लम ने भी फरमाया कि नमाज अल्लाह ताला के यहां बेहतरीन चीज है। सहाबा कराम ने अल्लाह के नबी से पूछा कि अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा कौन सा अमल महबूब है बंदे का, तो आपने फरमाया कि नमाज को उसके वक्त पे पढ़ना। अच्छा, अब नमाज को वक्त पे पढ़ा आपने, और आप इसका तज़किरा कैसे अल्लाह ताला के सामने करते हैं, आप इसको समझिएगा। मसलन आप बिजी थी, दोपहर का वक्त था, आपके बच्चे आने वाले हैं, खाना अभी पूरा पका नहीं, घर साफ नहीं हुआ, इतने में जोहर की अजान का वक्त हो गया। अब आपके पास क्वेश्चन है, पहले खाना पका लूं, घर साफ करूं, फिर बच्चों को पिक कर लूं, फिर नमाज पढ़ूं, ये तो 4 बज जाएंगे, मुझे तो होश ही नहीं होगी, या फिर मैं क्या करूं, जो भी होगा देखूंगी। अजान हो गई है, हैया अलस सलाह हैया अलल फलाह, पहले फर्ज 4 पढ़ लें। अब आपके पास एक सॉलिड रीजन आ गई ना अल्लाह का कुर्ब पाने की, काम बहुत है, वक्त थोड़ा है, या मेहमान आने वाले, आपके घर में 50 लोग आ रहे हैं, मगरिब की नमाज हो गई, अब आप जा तो खाने पकाएं और नमाज छोड़ें, या आप कहते जो मर्जी अल्लाह मैं तो पढ़ने लगी नमाज, बाद में देखेंगे क्या होगा। अब जू ही आपने चूल्हे हल्के करके मगरिब जाके पढ़ी, तो फिर बाकी खाना पकाते वक्त आपका दिल क्या कहेगा, अल्लाह आपकी मोहब्बत में ये बीच में ब्रेक लिया था, अब तो मेरे बाकी वक्त में बरकत डाल दे। अंडरस्टैंड करें? यानी जब हम अल्लाह के लिए कोई नेकी करते हैं ना, तो उसको पेश कर सकते हैं। जैसे हम अपनी दोस्तों से नहीं कहते अपनी जुबान में, ये मैंने आपके कहने पे कर दिया, मैं कभी ना आती लेकिन आपने इतने प्यार से बुलाया तो मैं आ गई। तो हम अपनी नमाजें जब वक्त पे पढ़ते हैं तो अल्लाह को कह सकते हैं ना, अल्लाह आपने इतने प्यार से बुलाया तो मैं आ गई, फजर के लिए उठने को दिल ही नहीं कर रहा, लेकिन आप कहते हैं अल्लाह आपने कहा ना कि सलातु खैरु मिनन नौम, तो अल्लाह जी देखिए मैं नींद छोड़ के आ गई। तो ये मोहब्बत की बातें हैं, और सही मुस्लिम की रिवायत 252 में ये चीज हमें मिलती है कि वक्त पे नमाज पढ़ना बंदे को अल्लाह का कुर्ब देता है।